पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो प्रभो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौगतिते हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुश्री देवी प्रणमामि हरिश्री आदेविका कुभर गद गदयाद्यवाचा व्यातिपत भूमि दंडवतौटी आशा प्रसाद मुदस्जन गंधर्भिके निजगणे गणन अंगश्यामलिनिखटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जड्डञ्जयकुटरोतिसां विदधतं पट्टम्बरस्य स्त्रिय वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदयं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन् भक्त्याभिज्ञा अपराधलक्ष्यैश्चेत्तस्य कामादितरं गमति कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणाय गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्राव्रजन्तमनुते समपेतकृत्यम् दैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो यं सर्वभूतैर्भयं मुनिमाम तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय माम लखित महाराज जी अपनी मैया को रसायन भक्ति रसायन सुना रहे हैं और सनातन गोस्वामी हम लोगों को सुना रहे हैं जिसमें उन्होंने वात्सल्य रस तक आकर के यशोदा मैया का उत्कर्ष और उनकी महिमा को वर्णन करने में असमर्थ होने पर उन्होंने कहा कि यशोदा मैया को तो स्पर्श करना बहुत कठिन है। जब पुतना को मोक्ष दे दिया जिनका देश अनुकरण करने से और भाव अनुकरण करके वो कृष्ण के पास आई और जिसके लिए उन्होंने दे दिया गोलोक बैकुंठ से ऊपर गोलोक की स्थिति दे दी मातृगत, तो जिनका देश अनुकरण किया था भाव अनुकरण किया था उनकी महिमा भी वर्णन करना साध्य से अतीत है। भगवान के को छह प्रकार से पाने का या पांच प्रकार से पाने का श्रीमद् भागवत में बतलाया गया। द्वेष भाव से, काम से, द्वेष से और भय से, स्नेह से, संबंध से और भक्ति से, ये इस प्रकार से भगवान को पाया जाता है। कोई जाने और न जाने कृष्ण को, कृष्ण के प्रति यदि किसी ने द्वेष भी किया और जान करके भी भगवान नहीं माना तो भी उसको मुक्ति दे देते हैं साई जी इत्यादि। किसी ने स्नेह किया उनको भगवान नहीं माना तो भी उनसे स्नेह किया। यदि कंस ने भय के साथ में शत्रु मान करके और उनको मारने की चेष्टा की और भगवान ने अनायास ही उसको मुक्ति दे दी, बघासुर को सबको दे दी। मरते समय जिसने कृष्ण को देखा वो शत्रु भी, महाभारत में शत्रु दल के लोग भी कृष्ण को देखा मरते हुए और वो भावलोक को ये संसार को पार कर गए। तो जिन्होंने काम से, काम माने कृष्ण को ही अत्यंत सुंदर रूपमान देखा और कृष्ण के प्रति लोभ उनको हो गया और उनकी बुद्धि मोहित हो गई और उनके प्रति प्रेम किया लोगों से छिप करके, तो उसको क्या देंगे? इसलिए काम के प्रति, गोपियों का उनके प्रति काम, स्नेह, पांडव लोगों ने स्नेह किया उस परब्रह्म से। कैसा स्नेह किया? कृष्ण की बहन को भी शादी कर ली और कृष्ण को अपने रथ हाँकने में नियुक्त कर दिया स्नेह से। दुर्योधन के घर में नहीं खाया उन्होंने मेवे इत्यादि, उसको त्याग कर दिया। अप्रेम के वशीभूत होकर के विदुर के घर में, विद्रानी नहीं थे और केले के छिलके खा करके वो आनंद लाभ किया, टेस्ट जो द्वारका में महिषियों के यहाँ से भी प्राप्त मधुर मिष्टान्न होने से भी उसको नहीं मिला। इसलिए स्नेह के वशीभूत होते हैं। स्नेह से किसी ने पाया, किसी ने काम से पाया, कोई शत्रु भाव से पाया भय से, और किसी ने शिशुपाल इत्यादि ने उनकी कितनी निंदा की किंतु उनको भी पा गए। उनका कृष्ण के अतिरिक्त तो कोई दूसरा शत्रु ही नहीं था, बस एक ही शत्रु कौन? अनन्य। इसलिए वो भी पा गया अनन्यता के कारण। कंस का दूसरा कोई था ही नहीं, बस कृष्ण से ही भय था। वो दिन रात कृष्ण कहाँ, कृष्ण को कैसे मारूं, कृष्ण को क्या करूं, बस दिन रात तन्मय। तो उसे उनके भीतर का जो कृष्ण का चिंतन किया शत्रु रूप में, तभी उनका हृदय निर्मल हो गया। अगस्त के हृदय में लोग, साधु लोग, संत लोग, बड़े बड़े ब्रह्मवादी लोग कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हैं हृदय में और नहीं आते, और अगासुर के हृदय में पेट में साक्षात रूप में बैठ गए, भीतर घुस गए, निकालने पर निकले नहीं, उसमरण गए। तो मतलब उसको कैसे हो गया? इसे उनको जानबूझ करके कोई प्रेम करे, जैसे जगत में किसी से प्रेमिका प्रेम करती है उनसे, वैसे ही कोई प्रेमिका बन करके कृष्ण को प्रेम करे तो उन्हें नहीं मिलेंगे, शत्रु भाव रूप से मिल रहे हैं तो ऐसे क्यों नहीं मिलेंगे? तो इस तरह से भगवान इन पांचों भाव में से कोई भी एक भाव कृष्ण के प्रति लगा दिया जाए तो वो मिल जाते हैं। इन्होंने कृष्ण को भगवान समझा या नहीं समझा, किंतु कृष्ण के प्रति पुत्र की भावना रखी, वात्सल्य भावना रखी, और वर्षों तक इनको अपना दूध पिलाया, स्तन पिलाया, अपनी गोदी में लेकर के खिलाया पिलाया प्रेम से। तो पुतना मरने की नियत से जाकर के विष दे करके वो गति पाली और इन्होंने प्रेम से कृष्ण को अपनी गोदी में लेकर के प्यार किया। इसको वो चाहेंगे जानती हैं कि नहीं, जब ब्रह्म है या नहीं है, उनको मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मणि मंत्र और औषधि की ऐसी ही क्रियाएं होती हैं, कोई जाने और न जाने मंत्र उस पर काम करेगा, कोई जाने न जाने औषधि भी कार्य करेगी। उसी रूप में कृष्ण की भी, कृष्ण के प्रति जैसे भी उनके पास में कोई निकट से जाए उसका कल्याण नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं उनका कृष्ण के प्रति पुत्र स्नेह स्नुता अलम। मैया देवकी को छोड़ दिया, फायदा हुआ यहाँ मथुरा, यदि मांग लिया भी गया, देखा कि यहाँ पर वो प्रेम नहीं है, उस दूध में इतना प्रेम नहीं है, उनके लाड प्यार में है किंतु वो प्रेम नहीं है, हमको भगवान जो जान करके हमको सूखी कर, इसलिए जोग माया के द्वारा लीला रच करके वो चले गए प्रेम का आस्वादन करने के लिए, दूध पीने के लिए गोकुल में चले गए और उनका दूध ये पिया, गायों का दूध पिया और गोपियों का। भला इनका संसार कभी हो सकता है? संसार माने क्या? संस्कृति, जो सम्यक रूप से सरता है, चलता है। कहाँ चलता है? जन्म मरण, और इसके बाद में बढ़ता है, बढ़ करके धीरे धीरे और बढ़ता है, फिर प्रौढ़ावस्था में आता है, फिर वृद्धावस्था में आता है, फिर जड़ और अंत में, और क्या, ऐसे ही कोटि कोटि जन्म जन्मांतरों में आवागमन में वो होते हैं। ऐसे ही नहीं, त्रिताप ग्रस्त आवागमन में वो होता है। ऐसा इन गोपियों को और गायों के लिए क्या ऐसा संसार होगा फिर? नहीं,
सनातन गोस्वामी ने युक्ति के लिए इसको विचार करके किया है। अब उनका संसार में उसी जन्म में ही उनका उद्धार हो जाए, अब फिर जन्म नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि उन्होंने कुछ छिपा करके यहाँ पर लिखा है, उनका तो जन्म ही नहीं था उस समय भी, उनका संसार ही कहाँ था। वो थे मुक्त के भी चूड़ामणि थी, मुक्त लोग इनकी चरणों की धूलि की उपासना करते हैं ना, इसलिए उनका संसार नहीं था। इसलिए वो कहना है कि ये सब इसके बाद उनका संसार नहीं होगा, ये हम लोगों के लिए एक बच्चे के हाथ में लोला देने के समान है, समझा रहे हैं सिद्धांत के द्वारा, किंतु बात ऐसी नहीं है। वो मुक्त ही नहीं थी, नित्य परिकर हैं वो कृष्ण के, इसलिए उस जन्म में ही नहीं, उनका जन्म नहीं होगा ऐसा नहीं। वो कहते हैं कि संसार किस लिए होता है, किस लिए संसार, अज्ञान के, अज्ञान क्या, कृष्ण का मैं दास हूँ इसको भूल जाना ही अज्ञान है, इसलिए अज्ञान संभव। ये पुनः पुनः जन्म होता है भगवान की विस्मृति से, भगवान को भूलने से होता है। कोई कोई कहते हैं कि हम ब्रह्म हैं और इसको भूल गए माया के वजह से, किंतु यह खरी बात नहीं करती। किस लिए, भगवान को कैसे, ब्रह्म को कैसे अज्ञान होगा, वो तो ज्ञान संपूर्ण है, उसको कभी भी अज्ञान नहीं हो सकता है। उसको माया कभी, माया नाम की कोई दूसरी वस्तु है ये है ही नहीं है, इसलिए अज्ञान संभव नहीं, इसलिए उसका संसार भी संभव नहीं। इसलिए भगवान के चरणों में अपराध के कारण, भगवान को भूलने के कारण ये स्थिति में आया है। अज्ञानता माने क्या, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, भगवान हमारे आराध्य हैं, इस चीज को भूल जाना। कैसे आप अपने मन से कहते नहीं, गीता भागवत में भी ऐसा कहा गया है, भयं द्वितीयात् अभिनिवेशतश्चात् ईशात् अपेतस्य विपर्ययोस्मि। जहीं भगवान से को भूला, उसकी बुद्धि का भ्रम हो गया, अब बुद्धि के भ्रम से क्या हुआ, भगवान की महामाया ने विक्षिप्त आत्मका शक्ति के द्वारा दूरी संसार में फेंक दिया और उसको स्वरूप को आवृत करके उसको फेंक दिया, इसलिए संसार चक्र में भटक रहा है। गोपियों का कृष्ण के प्रति पुत्र का अभिमान यह अज्ञान युक्त था न ज्ञान युक्त था, जान करके उनको ब्रह्म जान करके करती थी नहीं, तो वो माया मोहित होकर के कृष्ण को पुत्र ज्ञान करती थी। कृष्ण तो किसी के पुत्र नहीं है, हैं किसी के पुत्र, न खलु गोपिका नंदनो है, कृष्ण किसी के, यशोदा के पुत्र है नहीं, नहीं क्या है, अखिल देहि नाम अंतरात्म देहि। गोपियां कहते हैं नहीं, न खलु गोपिका, यशोदा के वो देवकी के पुत्र है नहीं, वो संसार के अंतर्यामी है नहीं, कृष्ण भगवान है नहीं, ये यशोदा के ही पुत्र हैं, निश्चित। इसलिए यहाँ पर उनका ज्ञान नहीं है, क्या वो ज्ञान को टपक करके गई हैं। ज्ञान का फल क्या है, ज्ञान का फल है साधारण रूप में कहते हैं ज्ञान के द्वारा मुक्ति होती है, किंतु ज्ञान के द्वारा क्यों मुक्ति चाहते हैं, उसमें आनंद की कल्पना करते हैं, आनंद चरम सीमा में कृष्ण में है और कृष्ण के इस वात्सल्य और मधुर रस में है उनको मानने, इसलिए सुखदेव जैसे ज्ञानी और हमारे चतुसन जैसे ज्ञानी, उद्धव जैसे ज्ञानी, नारद जी जैसे ज्ञानी और अंत में कलिकाल में शंकराचार्य जैसे ज्ञानी लोग, भज गोविंदम 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 भज मूढ़ नहीं नहीं रक्षति इत्यादि बतलाया है। इसलिए गोपियों का कृष्ण में जो ये पुत्र भाव अज्ञान का नहीं था बल्कि ज्ञान का चरम फल है। इसलिए यहाँ पर भावार्थ यह है बतला रहे हैं कि भगवत प्रेम का अनुसंगिक फल ज्ञान। इसलिए भागवत में कहा गया ज्ञाने प्रयास समुदपाश्यनमंतय जीवंत संगुखरित भवदीय वार्तान। पृथक ज्ञान के लिए प्रयास मत करो, क्या करो, जीवंत सन्मुखरितांग भवदीय वार्तां। भवदीय जो वार्ता, कृष्ण की जो वार्ताएं हैं, लीला कथाएं हैं, उनको सुनो, बस यही साधन है और यही साध्य हो जाएगा। इसलिए ज्ञान इत्यादि को छोड़ करके ज्ञान के लिए प्रयास क्या, ये मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वम असि सर्वम खलु इदम् ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि को छोड़ करके उसके लिए प्रयास नहीं करके क्या करो, कृष्ण के प्रति कैसे प्रेम हो इसके लिए प्रयास करना चाहिए। वो कैसे होगा, भगवान के लीला कथाओं का श्रवण करते 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 कृष्ण हृदय में प्रवेश करके जो कुछ करना होगा वो करना। इसलिए भगवत स्नेह का, भगवत प्रेम का अनुसंगिक फल ये ज्ञान है। भावार्थ यह कि ज्ञान जो है वो भगवत भक्ति के अंतर्भुक्त है। यही ज्ञान कच्ची स्थिति में जानेंगे इस तत्व को, तत्व ज्ञान को, उसमें तंग पदार्थ और तम पदार्थ का, ये ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। मैं कौन हूँ, ब्रह्म क्या है, ये इसको कहते हैं ज्ञान। इसके द्वारा क्या होगा, मुक्ति। मुक्ति में बहुत तरह के विचार, तो ये सब ज्ञान भगवत प्रेम के अंतर्भुक्त हैं स्वभावतः अपने आप ज्ञान हो जाता है। हमारे हनुमान जी ने ज्ञान के लिए प्रयास नहीं किया। कब उन्होंने साधन भजन किया था, कब, अपने इस जन्म में ना उस जन्म में, ने कब साधन भजन किया, असल में वो हैं शंकर जी, भगवान महादेव हैं, भगवान की सेवा के लिए वो उस प्रकार से रूप धारण करके जो भगवान अपनी सेवा में लेने में हिचकेंगे नहीं, कोई गौरव बुद्धि नहीं होगी, इसलिए ऐसा बना करके बंदर रहते हुए भी, हनुमान होते हुए भी, और जब किष्किंधा में राम से मिले हैं तो ब्राह्मण का वेश बना करके उनसे मिले, उस समय थोड़े शब्दों में किंतु सार शब्दों में, युक्तिपूर्ण शब्दों में उन्होंने रामचंद्र जी से वार्तालाप किया। राम कहीं ये साधारण आदमी नहीं मालूम होता है, ये कौन है, हैं? तो उनसे पूछा जे तुम कौन हो, तो झट अपना रूप, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, यह भाव यार। तो कहते हैं जैसे ये सब समय उनका है, नित्य परिकर हैं वो राम के, भगवान के। ज्ञान अपने आप आएगा, अपने आप आता है। उद्धव महाज्ञानी हैं, बृहस्पति के शिष्य माने जाते हैं और कृष्ण के संगी। जितना उनका ज्ञान था उसकी गठरी उन्होंने बांधी और गोकुल गए वृंदावन में, नंदगांव, गोपियों को समझाने का ठेका कृष्ण ने उनको दे दिया, जाओ उनको सांत्वना देना, तुम समझोगे ये तुम्हारा ज्ञान कैसा है, और भेजा। और उनको पक्का विश्वास था कि गोपियों को वो तो
चुटकी बजाता है,
गोबर पाथने वाली साधारण ग्वालिनियां हैं, चुटकी बजाते ही हम नंद बाबा को और यशोदा जी को और गोपियों को समझा देंगे, सखाओं को समझा देंगे। कृष्ण ने कहा हमारे पिताजी हमारे विरह में बड़े तड़फ रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है, वो हमको पुत्र समझते हैं, तुम जरा उनको जा करके समझा देना जो मैं ब्रह्म हूँ, उनका पुत्र नहीं हूँ, ये समझा देना। इसलिए उनको ये समझा करके भेजा दे, जाओ उसको समझा देना। और मेरे पिताजी की तो ऐसी बात, मैया को भी जरा देखना, यदि वो समझने की स्थिति में हो, बेहोश ना हुई हो, तो उसको भी थोड़ा सा चेष्टा कर। सबसे मैं तुमको भेज रहा हूँ किसके लिए, अब तुमको बतलाता हूँ पीछे, जो बड़े कष्ट से प्राणों को धारण कर रहे हैं और मेरे लिए सब कुछ प्रत्याग कर दिया है, देह और दैहिक सब कुछ हमारे लिए छोड़ दिया, अब उनका कोई कुछ नहीं है, बड़ी कष्ट से प्राण धारण कर रहे हैं, वो किसी की बात ही नहीं सुनती हैं। मैं समझता हूँ कि आप उनको भी कुछ शिक्षा और दे करके और समझा बुझा करके आए। जब वहाँ गए और जहाँ थोड़ी सी गोपियों से भेंट, गोप नंद बाबा से ही हुई, उनकी बात छोड़ दो, गांव वाले वहाँ पर चले आए, भाई ये कौन है, श्याम है किंतु श्याम तो नहीं मालूम पड़ता, श्याम है श्याम श्याम बटे किंतु श्याम है किंतु श्याम तो नहीं, मतलब क्या, देखने में तो श्यामला है किंतु ये श्याम वैसे के ही समान है, ये कौन है। गोपियों ने सूंघा, अरे ये तो सुगंध आ रही है कृष्ण की सचमुच, किंतु ये कृष्ण तो है नहीं, है कौन, देखा जी गंध आ रही है कृष्ण की, हमारी नाकें भूल नहीं कर सकती हैं, आंख भूल हो सकती है, नाक भूल नहीं करेगी, ये गंध का कुछ नहीं, और सचमुच वो गृंद का कृष्ण का गंध, कैसे उद्धव जी ने कृष्ण ने अपने वहाँ से निकाल करके और ये कृष्ण के अंगों का गंध उसमें था। कह जी ये कौन है किस लिए आया, ओ ये अक्रूर ये फिर से आया है किस लिए आया, क्योंकि वो अक्रूर है ना, किस लिए आएगा किस लिए, वो तो पहले ही हमारा प्राण हरण कर ले करके लेकर के चला गया, अब किस लिए आया, वो आया है इसलिए कि अब सब मरे हुए होंगे और उनको जरूरत है पिंड की, क्योंकि कंस मारा गया है तो हृदपिंड सबसे अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर लाखों लोग कृष्ण के विरह में तड़पते हुए मरे होंगे, उनका हृदपिंड निकाल करके कंस को ले करके पिंड दिया गया, इसलिए ये जरूर आया है, अब हम लोग का हृदपिंड भी ले जाएगा। देखो तो आया है कैसे, सोने के रथ में चढ़ करके आया है, अपनी चमत्कारी क्या दिखाने के लिए। देखो जसोदा मैया मैं कैसा हूँ, मैं साधारण हूँ, हमारा नौकर चाकर चलते हैं सोने के रथों में, तुमने कभी देखा, तुम्हारे ब्रज में कभी रथ चला होगा नंद बाबा के घर में, ये दिखलाने के। उद्धव जी कह रहे हैं जी अभी पृथ्वी फट जाए मैं समा जाऊँ, मैं क्यों रथ में चढ़ करके आया, क्यों इतना श्रृंगार करके आया, वहीं पर उनका ज्ञान सब खत्म हो गया। नंद बाबा से गए बातचीत हुई, नंद बाबा जी रोने लगे तो इनको सांत्वना देने के लिए शब्द खोज रहे थे, कैसे इनको समझाऊं, ये तो कृष्ण के लिए रो रहे हैं, यदि कहूं मत रोइए तो कृष्ण के विरह में या कृष्ण के लिए जिनके आंखों में एक भी आंसू आ जाए जगत में सबसे वो श्रेष्ठ है, ये तो आंसू आना चाहिए जिसको आ जाए ना। हम लोगों को कभी कभी हरि नाम लें या हरि कथा कहते समय कृष्ण के लिए आंसू आ जाते हैं, हम लोग समझते कि आज हमारा जीवन सफल, और ये तड़प तड़प करके उनके लिए रो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, इनको मैं कैसे कहूँ जी आप मत रोइए, यदि कहूँ जो रोइए खूब खूब रोइए नंद बाबा आपके समान और कोई सौभाग्यवान नहीं, तो सांत्वना कैसे होगी, अब मैं क्या करूँ। बहुत तरह से विचार किया कोई शब्द नहीं मिला उनको, अंत में बोले विचार करके सांत्वना तो देना ही है, बोले जैसे नंद बाबा आप बड़े सौभाग्यवान, आपका पुत्र ये कृष्ण आपका पुत्र नहीं, ये तो परब्रह्म है, इस जगत में आए हैं धर्म की प्रतिष्ठा के लिए और प्रेम का आस्वादन करने के लिए जगत में आए हैं, ये तुम्हारे पुत्र नहीं है। और यही कहकर सुनते ही नंद बाबा और भी 10 गुना रोने लगे, बोले जैसे बेटा मैं तुमको बुद्धिमान समझता था किंतु तुम्हारे दूध के दांत अभी नहीं गए हैं, तू वैसा का वैसा ही मूर्ख बना हुआ है, अज्ञानी बना, कृष्ण में के साथ रह करके भी तुमको अकल नहीं आई इसलिए हमको खेद है। तुम कहता है मेरे पास में एक कांच का टुकड़ा था और वो टुकड़ा को मैं बहुत पसंद कर रहा था और उसे खेल रहा था। कुछ देर के बाद में किसी ने वो टुकड़ा कांच का ले लिया। मैं खोज रहा हूँ कि कहाँ गया कांच का टुकड़ा, कहाँ गया। कोई एक व्यक्ति आए, बोले जी भाई क्यों ऐसा हैरान है, क्या ढूंढ रहे? मेरे पास में एक कांच का टुकड़ा था, वो किसने ले लिया? अरे कांच का टुकड़ा वो मैंने देखा था, वो कांच का टुकड़ा नहीं था, वो तो हीरा था, कहनूर हीरा से भी मूल्यवान। तो और वो रोने लग गया। वैसे तुम हम पहले तो मैं पुत्र के लिए रो रहा था, कृष्ण को पुत्र समझता था, और तुमने बतला दे वो परब्रह्म, ऐसा परब्रह्म पुत्र पा करके भी हमारे हाथ से निकल जाए और मथुरा में जा करके वहाँ मथुरा में देवकी वसुदेव की यहाँ पर जा रहा है। सचमुच मैं उस प्रेम के योग्य नहीं था जो वो प्रेम चाहता था, इसलिए हमारी इस कमी के वजह से वहाँ से चला गया। और ये कह करके फुट फुट करके रोने लगे। उन्होंने कहा कि मैंने अनर्थ किया, ऐसा मुझको नहीं कहना चाहिए था। इस प्रकार से रात भर नंद बाबा की बात सुनता रहे। यशोदा जी प्रेम में विवल होकर के केवल रो रही। फिर गोपियों के पास में वो गए, वहाँ पर विचित्र दशा दी। ज्ञान की जितनी उनकी गरिमा थी वो सब कुछ चला गया जमुना में। उनके आंसुओं, गोपियों के आंसुओं के साथ में जमुना में जाकर कर जमुना से गंगा, गंगा से खारे समुद्र में जाकर के वो सब समाप्त। तो बड़े बड़े ज्ञानियों की ऐसी बात है। नारद जी जैसे लोगों को दूर से वंदना करते हैं। ब्रह्मा से और कौन बड़ा ज्ञानी होगा, वो भी ऐसी प्रार्थना करते हैं। इसलिए ये कहते हैं कि जहाँ पर कि ऐसा प्रेम है, पुत्र स्नेह है, उसमें ज्ञान इत्यादि सब कुछ उसी के अंतर्गत है। यही ज्ञान पीछे से भाव होता है, यही भाव अंत में प्रेम, प्रेम से स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव होकर के कृष्ण को वशीभूत कर लेता है। इसीलिए हम जगत में आए हैं इस प्रेम के लिए, साधन के लिए आए हैं। ये कृष्ण दूसरों के प्रति मुक्त भुक्ति माने भोग, मोक्ष और सब कुछ देने वाले हैं। यहाँ तक कि कैवल्य, कैवल्य आदि अर्थ सब कुछ देने वाले, किंतु भक्तों को क्या देते हैं? प्रेम देते हैं। यही केवल प्रेम को ही कैवल्य कहते हैं। श्रीमद्भागवत के श्लोक इत्यादि में इसका वर्णन किया गया है। वेदांत शास्त्र में भी आनंदमय अभ्यासात इत्यादि के द्वारा इसी चीज को कहा गया है। अच्छा, कल हम लोगों ने इसको आरंभ किया था। पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुधिर आशिना जिघांस्यापि हरे स्तनं दत्ता गतिम दत्ता आप सदगतिम, सदगतिम को पाया कौन? पुतना। कैसी थी पुतना? बाल बालाग्नि, लोक बालाग्नि। लोक में जितने लड़के हैं उन लड़कों को मार करके उनका रुधिर पान करने वाली राक्षसी, केवल रक्त और मांस खाने वाली, और कृष्ण को अपना कालकूट 20 स्तन में भर करके पिला करके उनको मारना चाहती थी, किंतु स्तन दे करके आप सदगति, आप मैंने प्राप्त किया। क्या सदगतिम? सदगतिम क्या? उसी के लिए यहाँ पर बतला रहे हैं। सदगति सत व्यक्ति अर्थात साधु व्यक्ति, संत व्यक्ति जिस गति को प्राप्त करता है
वो सदगति। सदगति किसको कहा गया? कज मुक्ति पाने वाले को संत कहते हैं, उस गति को कज। ऐसा अर्थ मत कीजिए। क्यों? क्योंकि वो बतलाया गया ना, चार प्रकार की, पांच प्रकार की मुक्तियों को देने पर भी दियमानम भगवान की सेवा को छोड़ करके इन पांच प्रकार की मुक्तियों को भी देने पर भी भगवान के नहीं ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि बतलाया वृत्रासुर के द्वितीय श्लोक में, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम लोकजोग सिद्धि अपुनर्भवं वा। मैं अपुनर्भव, संसार में जन्म नहीं लेने का जो मुक्ति है इसको भी मैं नहीं देना चाहता। किसके लिए? आपकी प्रेम रूपी सेवा को छोड़ करके ये सब मैं नहीं चाहता। इसलिए तो ब्रज में आए, इसलिए ब्रज में आए थे।